आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांत।
परम पूज्य गुरुदेव की उद्बोधनों की शैली एक गूढ़ विशेषता को अपने भीतर समाहित किए हुए है। उनके व्याख्यानों में यह मौलिकता है कि वे स्वयं के उद्धरणों से लेकर सामाजिक संदर्भों का सहारा लेते हुए क्लिष्ट सिद्धांतों को इतनी सरलता से समझा देते हैं कि हर किसी के लिए उन बातों को समझना और समझने के साथ उन पर अमल करना सहज संभव हो जाता है।
प्रस्तुत उद्बोधन में परम पूज्य गुरुदेव कुछ इसी तरह से आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करते दिखाई पड़ते हैं।
वे कहते हैं कि बाहर का पूजा पाठ और कर्मकांड एक प्रतीक मात्र हैं, उनके पीछे के सिद्धांतों को समझे बिना उन पर अमल करना किसी मूल्य का नहीं।
वे दीपक प्रकाशित करने से लेकर पुष्प अर्पित करने की समसामयिक और प्रासंगिक व्याख्या करते नजर आते हैं।
आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को।
नासमझी को समझदारी में बदलना है आध्यात्मिकता। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवियों भाइयों,
जो लोग अपने कार्य पूरे करने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए और दूसरी चीजों के लिए अपनी जिंदगी को तबाह करते रहते हैं, मित्रों,
मैं उनको समझदार कहूँ?
कैसे समझदार कहूँ, मैं तो उन्हें नासमझ कहूँगा। आपकी दुनिया नासमझ है और आध्यात्मिकता का उद्देश्य आदमी की नासमझी को समझदारी में परिवर्तित करना है।
मेरे साथ भी यही हुआ।
45 वर्ष पूर्व मेरी नासमझी में समझदारी का समन्वय किया गया और मैं छोटा सा नासमझ मनुष्य और छोटा सा मगरमच्छ स्वार्थों का मारा, इच्छाओं का मारा, वासनाओं का मारा, एक गए गुजरे छोटे से मनुष्य के पास ज्ञान की धारा की एक अमृत किरण आई, तो मैं न जाने क्या से क्या हो गया। मेरे साथ मेरे गुरुदेव ने जो किया और मैं चाहता हूँ कि स्थिति को भुला करके मैं भी आपके साथ वही करूँ जो मेरे गुरुदेव ने मेरे साथ किया। मेरे गुरुदेव ने मेरा ज्ञान की धारा से परिचय कराया कि आध्यात्मिकता उस चीज का नाम है जो मनुष्य के जीवन में समाविष्ट हो जाती है और जीवन में जो ज्ञान उतारा जा सकता है उस चीज का नाम आध्यात्मिकता है।
मित्रों,
मुझे बहुत पहले यह मालूम था कि आध्यात्मिकता उस चीज का नाम है जो थोड़ी सी पूजा, थोड़ा सा टंटखंड जैसी चीजों में काम में लाई जाती है। मुझे आध्यात्मिकता का मतलब इतना मालूम था कि माला घुमाई जा सकती है, पूजा की जा सकती है,
रामायण गीता भागवत पढ़ी जा सकती है,
भगवान को चावल चढ़ाया जा सकता है, रोली चढ़ाई जा सकती है, आरती उतारी जा सकती है।
आध्यात्मिकता के बारे में पहले मेरा यही ख्याल था, फिर मेरा यह ख्याल बदल गया,
मेरी अक्ल और समझ को बदल दिया गया,
उसमें जमीन आसमान जैसा फर्क हो गया।
मुझे जब असलियत मालूम पड़ी तो मैंने कुछ और ही बात पाई।
असलियत जब मैंने देखी तो यह पाया कि जो भी कर्मकांड है, जो भी उपासना है, उसका ऊपर का मतलब और उनका उद्देश्य एक ही है कि मनुष्य के अंतरंग का, उसकी जीवात्मा का स्तर ऊंचा उठाया जाए और मनुष्य की भावनाओं का विकास किया जाए। आंतरिक जीवन की उत्कृष्टता है आध्यात्मिकता। मित्रों, भावनाओं का घटियापन है तो आदमी घटिया ही बना रहेगा, श्रेष्ठ नहीं बन सकता।
अगर भावनाएं ऊंची हैं तो वह कभी भी ऊंचा बन सकता है।
ऊंचा व्यक्तित्व श्रेष्ठ व्यक्तित्व की निशानी है। ऊंचा व्यक्तित्व जहां कहीं भी होगा, ऊंचा व्यक्तित्व जहां कहीं भी निवास करता होगा, उसको लोकहित प्रधान और पालक माना जाएगा। और घटिया वाला व्यक्तित्व यदि मनुष्य का है तो दुनिया भर की असुविधाएं और कठिनाइयां पैदा हो रही होंगी।
आंतरिक जीवन का तो सवाल ही कहां पैदा होता है, इसलिए हमें कर्मकांडों का, पूजा उपासना का सारे रहस्य सिखाया गया है। यह बात मेरी समझ में आ गई और मेरे रोम रोम में समा गई। मैंने यह पाया कि जो कुछ भी हमें पूजा पाठ के क्रिया कृत्य करने हैं, उनके माध्यम से हमको अपने व्यक्तित्व, अपनी विचारना, अपनी भावना और क्रिया पद्धति का परिष्कार करना चाहिए।
यह तथ्य मुझे मालूम पड़े, पूजा का यह रहस्य मुझे मालूम पड़ा।
भगवान के चरणों पर क्यों गुलाब का फूल चढ़ाया जाता है, मेरी समझ में आ गया। खिलता हुआ गुलाब, हंसता हुआ गुलाब, मुस्कराता हुआ गुलाब, सुगंध से भरा हुआ गुलाब का फूल इस बात का अधिकारी है कि भगवान के चरणों में स्थान पाए और भगवान के गले में स्थान पाए।
भगवान को पुष्प अर्पित करने का अर्थ। मित्रों,
गुलाब केवल उस पौधे का नाम नहीं है जो वनस्पति के ढंग से पैदा होता है। भगवान उस आदमी का नाम नहीं है जो गंदगी में रहता है और गुलाब का फूल अगर सूंघने को मिल जाए तो फूल कर कुप्पा हो जाता है।
गुलाब के फूल से क्या लेना देना भगवान को, सारी की सारी दुनिया में गुलाब ही तो खिले हुए हैं। बोलो क्या करेगा वह तुम्हारा गुलाब लेकर के।
भगवान को गुलाब समर्पित करने का मतलब उसकी किसी जरूरत को पूरा करना नहीं है, बल्कि अपने मन के ऊपर एक छाप, एक संस्कार को डालना है कि मनुष्य का जीवन इस गुलाब के पुष्प की तरह से खिला हुआ होगा तो हम भगवान का प्यार और भगवान की समीपता पाने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। क्या हम गुलाब के फूल के तरीके से खिलने की कोशिश करते हैं? क्या आपने आपको गुलाब की तरह सुगंधित बनाया? क्या आपने आपको हंसता हुआ आदमी बनाया? क्या आपने आपको पुष्प बनाया?
क्या आपने आपको हंसता हंसाता खिलता खिलाता व्यक्ति बनाया? क्या अपनी खुशी को दूसरे आदमी की खुशी देने का अधिकार दिया?
अगर हमने ऐसा किया तो समझना चाहिए कि हमने फूल चढ़ाने की बात और फूल चढ़ाने का रहस्य जान लिया। अगर हमारी समझ में इतनी सी बात आ गई तो मैं समझता हूँ कि आपका फूल चढ़ाना सार्थक हो गया।
मित्रों,
इसी तरीके से हमने भगवान को चंदन चढ़ाया, कर्मकांड किया। सिंदूर चढ़ाने का मतलब यह नहीं कि भगवान गंदगी में रहता है और उसकी नाक में बदबू भरी रहती है।
उनको चंदन लगा देंगे तो उनका काम चल जाएगा,
इसका यह मतलब नहीं है। भगवान जहाँ रहता है वहाँ खुशबू की कोई कमी नहीं है।
वहाँ सुगंधित पदार्थ बहुत भरे रहते हैं।
वहाँ धूप बत्तियाँ बहुत चलती रहती हैं। अगर हम चंदन न चढ़ाएं तो भगवान जी को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है।
सुगंधित द्रव्य और मिष्ठान अर्पित करने का मर्म, सुगंधित पदार्थ चढ़ाने का मतलब यह है कि हमारा जीवन शांत और सुगंधित हो।
जहाँ कहीं भी चंदन लगाया जाए वहाँ शांति और सुगंध हो। जिस किसी भी मस्तिष्क पर लगाया जाए उसे शीतल कर दे। चंदन के सम्मुख जो भी पौधे उगे हुए हों वह उन उगे हुए पौधों में अपनी खुशबू उड़ेल दे। हम अपने पास अपने सम्मुख रहने वाले व्यक्तियों को भी वैसा ही बना दें जैसा कि चंदन अपने समीप के पौधों को सुगंधित बना देता है। चंदन के आसपास सांप बिच्छू के जहर का उस पर असर आया? नहीं आया। वह आदमी जो चंदन के तरीके से अपने जीवन को बना लेता है या बना सकता है, उसी को यह हक है कि हमने चंदन चढ़ा करके चंदन चढ़ाने का मकसद और चंदन चढ़ाने का उद्देश्य पूरा कर लिया।
मित्रों,
भगवान को हम शक्कर चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं।
शक्कर चढ़ाने का मकसद और मिठाई चढ़ाने का मतलब क्या है? मिठाई चढ़ाने का मतलब यह है कि भगवान को मीठा प्रिय है। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान को खटाई नापसंद है। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान जी मिर्च नापसंद करते हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे जायके भगवान को पसंद नहीं है।
मिठाई चढ़ाने का मतलब सिर्फ एक है कि भगवान सबसे ज्यादा जिसे प्यार करते हैं, भगवान की सबसे प्रिय वस्तु जो हो सकती है, वह मनुष्य की वाणी की मिठास, मनुष्य के व्यवहार की मिठास, मनुष्य की क्रिया की मिठास, मनुष्य की वृत्तियों की मिठास है।
अगर मिठास हमारे जीवन के हर क्रियाकलाप में घुल जाए तो हम इस बात के अधिकारी बन सकते हैं कि भगवान को हमारा जीवन और हमारी मनोभावना को मीठे की तरह समर्पित कर सकते हैं।
हमारा व्यवहार मिठास से युक्त हो। दीपक प्रकाशित करने का रहस्य। मित्रों,
हम दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने का मतलब यह नहीं है कि भगवान की आंखों की रोशनी कम हो गई है। जब आदमी को कम दिखाई पड़ता है तो माइनस और प्लस के चश्मे लगाने पड़ते हैं। भगवान जी को मोतियाबिंद हो गया यह मतलब नहीं है। भगवान जी की आंखें सही हैं। भगवान जी के आंखों को धरती पर रखी किताब पढ़ने में और अखबार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। उनकी आंखें सही हैं। फिर दीपक जलाने से क्या मतलब है? हमको तो दीपक जलाने की जरूरत होती है क्योंकि दिन में जब अंधेरा हो जाता है और बादल छा जाते हैं और प्रकाश कम होता है तो बत्ती जलानी पड़ती है। ठीक है, आंखें कमजोर हैं इसलिए बत्ती जलानी पड़ती है, लेकिन भगवान जी की आंखें कमजोर नहीं हैं। भगवान जी की आंखों के आगे दीपक जलाएं या न जलाएं, उन्हें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर दीपक जलाने की आवश्यकता क्या है? दीपक जलाने की जरूरत केवल यह है कि हम अपने जीवन में एक तरह की भावना का विकास करें कि भगवान को दीपक प्यारा है, भगवान दीपक को मोहब्बत करते हैं। दीपक वह जिसके मन में जलने की तमन्ना है। दीपक के पेट में प्यार भरा हुआ है। प्यार स्नेह सत्कार को कहते हैं और स्नेह का दूसरा अर्थ घी भी होता है, तेल भी होता है। जिसके पेट में स्नेह भरा हुआ पड़ा है वह है दीपक, और जिसने यह नीति अख्तियार कर ली है कि मैं दुनिया में उजाला फैलाऊंगा और अंधेरे में उजाला करूंगा, इसके लिए मैं जलने के लिए तैयार हूं। दीपक की तरह प्रकाश देने वाले बने। जो आदमी उजाला करने के लिए जलना मंजूर करता है वह आदमी उन सितारों के तरीके से है जो रात के समय जब चारों ओर अंधेरा छाया रहता है और उस अंधेरे से जो मुसाफिर रास्ता भूल सकते थे, भटक सकते थे, उनको अपनी छो समझदारी के द्वारा रास्ता दिखाता रहता है।
बच्चे गाते रहते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। मित्रों,
इस तरीके से छोटा वाला मनुष्य अपनी छोटी छोटी प्रवृत्तियों के कारण इस संसार में प्रकाश कैसे फैला सकता है, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली जिंदगी कैसे जी सकता है? हम रास्ता दिखाने वाली जिंदगी जी सकते हैं। रास्ता दिखाने वाली जिंदगी गरीब आदमी भी जी सकते हैं और हजारों मनुष्यों को रास्ता दिखा सकते हैं।
काश हमने ऐसी जिंदगी जी हो। ऐसी जिंदगी का जीना भगवान की भक्ति का, दूसरे कर्मकांडों, पूजा का उद्देश्य भगवान का उद्देश्य पूरा कर सकता है।
हमारे मन में केवल कर्मकांड की क्रिया समझ में आए और उद्देश्य समझ में आए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, यह कहना मुश्किल है।
इसलिए मित्रों, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया कि हमको जो आध्यात्मिकता के सहारे, पूजा के सहारे, गायत्री महामंत्र के सहारे हमें अपने आप का, अपनी जीवात्मा का विकास करना चाहिए और अपनी विचारणाओं, अपनी भावनाओं का परिष्कार करना चाहिए। भावनाओं और विचारणाओं का परिष्कार जहाँ कहीं भी जिन व्यक्तियों ने शुरू किया, छोटे छोटे, नगण्य से नगण्य, गरीब से गरीब, मामूली आदमी महानतम व्यक्ति होते हुए चले गए।
भगवान का अनुग्रह, कृपा और वरदान प्राप्त करने के लिए उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ा। उन्होंने वह सब कुछ प्राप्त किया जिसकी मामूली आदमी ख्वाब में कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसी चीजों का हकदार आप में से हर आदमी बन सकता है।
अगर आप लोगों को यह ख्याल आए कि आप लोगों को अपना मन, आपको अपनी नीयत, आपको अपना चाल चलन, आपको अपनी रीति नीति और आपको अपनी जिंदगी की गिरी हुई स्थिति ठीक कर लेनी चाहिए।
इतनी छो बात अगर आपकी समझ में आ जाए तो मजा आ जाए।
आपको भगवान का प्यार और भगवान की कृपा मिलती हुई चली जाए। अनुग्रह करने को प्रतीक्षारत है भगवान। मित्रों,
इसी तरीके से निधि भी है। निधि पाने के लिए भगवान की कृपा और भगवान की दया और भगवान की मोहब्बत सुरक्षित रखी हुई है। भगवान बहुत देर से इस इंतजार में बैठा हुआ है कि कोई तो आदमी हो जिसको कि मेरी मोहब्बत पाने का हक है।
कोई तो आदमी हो जिसको कि मैं अपना प्यार हूँ। कोई तो आदमी हो जिसको कि मैं अपनी सहायता दूँ।
भगवान ने यही भरोसा किया है और उन्होंने बहुत तरह की बहुतों को सहायता दी है।
अर्जुन को उन्होंने कहा, अर्जुन,
दुनिया में बुराइयां बहुत फैली हैं। बुराइयों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को जोखिम में डालना चाहिए और दुनिया में से बुराई को दूर करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, मुझे आप क्यों झगड़े में फंसाते हैं? इस काम को आप किसी और को सौंप दीजिए और मुझे तो आप पूजा करने की बात बता दीजिए, जो दुनिया में सबसे सुगम काम है। इससे सुगम काम कोई और नहीं है। यह सबसे सस्ता और सबसे सरल काम है। कारोबार चलाना हो तो आपको अक्की की जरूरत है। धागा टूटे नहीं और सूत खराब ना हो जाए और कपड़ा खराब ना हो जाए, बिक्री अच्छी हो तभी फायदा मिलेगा।
और माला घुमानी हो तो खटखट घुमाते रहिए, स्पीड का ध्यान रखना, माला घुमा दीजिए।
सबसे सस्ता और सबसे सरल और सबसे हल्का काम है भगवान का।
लेकिन मित्रों, अर्जुन ने कहा, यह माला जैसा सस्ता काम दे दीजिए हमको।
56 लाख आदमी गंगा जी पर बैठे रहते हैं और सटक सटक माला घुमाते रहते हैं। बस यही काम मैं कर लूंगा तो भी मेरा काम बन जाएगा। आप झगड़े में मुझे मत फंसाए।
भगवान ने कहा, अर्जुन, तुझे झगड़े में फंसना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जब भी दुनिया में अवतार लेता हूँ तब मेरे अवतार लेने के दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य है धर्म संस्थापनार्थाय और दूसरा है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश।
मैं कभी भी कहीं भी आऊंगा तो इन दो कामों के लिए ही स्वयं आऊंगा, और कोई भी मेरा मकसद नहीं। अगर मैं मनुष्य के भीतर कभी आऊंगा तो इन्हीं दो कामों के लिए आऊंगा, तीसरा कोई मकसद नहीं है मेरे आने का।
जब मैं आऊंगा तो सभी को इस काम में लगाऊंगा। धर्म की स्थापना करने के लिए जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को भुला दे और अपनी सारी शक्ति को खर्च कर डाले, वह आदमी पाप, अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए अपनी शक्तियां खर्च कर डाले।
ऐसा तुम्हें भी करना चाहिए।
मित्रों, अर्जुन ने भगवान की बात को मंजूर कर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपना गांडीव उठा और तीर चला।
बाकी सब काम मैं कर लूंगा।
अर्जुन ने कहा, मैं थक गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुझे थकने नहीं दूंगा। अर्जुन ने कहा, मैं रास्ता भूल गया। तब
उन्होंने कहा, मैं तेरे घोड़े चलाऊंगा।
भगवान आगे आगे रथ चलाते हुए चले गए और अर्जुन गांडीव से तीर चलाता रहा। गांडीव चलाने वाले अर्जुन, जो कि भगवान का काम करने को कटिबद्ध हुए, भगवान की सहायता करने के अधिकारी हुए। यह तो पुराने जमाने की बात हुई। बुद्ध को मिला भगवान का अनुग्रह।
भगवान की आज्ञानुसार गौतम बुद्ध जो पूजा पाठ करते, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आपका प्यार पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, अपने जीवन में क्या काम करना होगा।
उन्होंने कहा, एक धर्म की स्थापना और एक पाप का विनाश। इसलिए तुम धर्म की स्थापना करो। लोगों से कहो, बुद्धम शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। समाज में संघबद्ध रहो और विवेक बुद्धि की, अकी की सहायता से अज्ञान और अनाचार, अवसाद और छोटापन, परंपराओं और मान्यताओं, इनके पीछे भागने वाली दुनिया को रोको और कहो, बुद्धम शरण गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाऊंगा, विवेक की शरण में जाऊंगा, विवेक के अतिरिक्त अन्य सबको निस्तारित कर दूंगा। उन्होंने कहा, सब संघबद्ध हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। मित्रों, बुद्ध ने भगवान की आज्ञा मानी। और बुद्धम शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि का संदेश लेकर भगवान बुद्ध चले गए और वैदिक हिंसा, तामसी और अंध परंपरा जो देश में फैली हुई थी उसके लिए उन्होंने धर्मगत संघर्ष किया। उस जमाने का महान क्रांतिकारी बुद्ध अकेला था और जंगल में बैठा हुआ था।
भगवान से उसने कहा, आपने मुझे इतना बड़ा काम सौंपा, मैं किस तरीके से काम करूंगा? मेरे पास रुपया पैसा कहाँ है और मेरे पास साधन कहाँ है?
भगवान ने कहा, चल आगे आगे और मैं आया रुपया लेकर के। और मित्रों,
वह आए सम्राट अशोक के रूप में आए। उन्होंने कहा, आप हैं जो भगवान का काम करने के लिए बैठे हैं।
बुद्ध ने कहा, हाँ, भगवान की आज्ञानुसार, भगवान की इच्छानुसार मैंने अपने जीवन को हथेली पर रखा और अपनी सारी की सारी बागडोर भगवान के सुपुर्द कर दी। सम्राट ने कहा, फिर आपको सामान साधनों की जरूरत होगी? उन्होंने कहा, हाँ, मुझे पैसा चाहिए, साधन चाहिए।
अशोक ने कहा, भगवान का सारा साधन आपके चरणों में समर्पित है, सारी की सारी चीजें, धन और दौलत उनके पास आ गई।
बुद्ध भगवान ने 2.5 लाख शिष्यों के माध्यम से समूचे एशिया और सारे विश्व में क्रांति की लहर फैलाई और भगवान स्वयं अशोक के रूप में उनकी सहायता कर रहे थे। मित्रों, एक बार देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। उनसे भगवान ने इच्छा की और उनको आज्ञा दी कि पुरुषार्थ किया जाना चाहिए और इस विश्व वसुधा में जो अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं उनको निकाला जाना चाहिए।
देवताओं ने कहा, हार जाएंगे, और असुरों ने कहा, हम हार जाएंगे। भगवान ने कहा, मैं तो जिंदा हूँ, तुम्हें हारने नहीं दूंगा।
समुद्र मंथन होने लगा। मंदराचल पर्वत समुद्र के नीचे तलहटी में चलने लगा। देवता चिल्लाए, महाराज,
जिस मंदराचल से हम मथानी का काम ले रहे हैं वह तो अब डूबा और हमारा काम फेल हुआ।
कच्छप का रूप बना करके भगवान आए और मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। समुद्र मंथन होता रहा और समुद्र से रत्न निकाले जाते रहे। भगवान ने की शंकराचार्य की सहायता। मित्रों, शंकराचार्य भगवान का कार्य करने के लिए रवाना हुए और उनकी दिग्विजय की यात्रा बाधित हो गई। वे बीमार हो गए। शंकराचार्य ने कहा, भगवान, मैं बीमार हूँ।
मैं 22 साल का छोकरा हूँ और देखिए मुझे भगंदर का फोड़ा है। मैं बहुत छोटा हूँ और बीमार हूँ, आपका काम कैसे करूंगा?
सम्राट माधाता उनके पास आए। उन्होंने कहा, शंकराचार्य,
आप दिग्विजय करने के लिए विश्व में जा रहे हैं?
उन्होंने कहा, हाँ, जा रहा हूँ। तब राजा ने कहा, आप मेरी सेना ले जाइए और मेरा रथ और सैनिक ले जाइए।
आपसे शास्त्रार्थ में जो कोई मुकाबला करे, जो ज्ञान से आपका मुकाबला करे तो आप कीजिए, और जो बल से मुकाबला करे, ताकत से धमकाना चाहे तो मेरे सैनिक उसकी अक्ल ठिकाने लगा देंगे। राजा माधाता की करोड़ों की सेना और भरा खजाना आ गया शंकराचार्य की मदद के लिए।
मित्रों,
मैं गांधी जी की बात कहूंगा जो अभी अभी की बात है, कैसे भगवान की सहायता मनुष्य के ऊपर बरसती हुई चली गई और चली जाती रहेगी।
जापान में एक छोटा सा छोकरा था।
उसके मन में आया कि कमाते खाते तो सभी हैं, धनवान सुखी रहने की तमन्ना तो सभी के जी में है, मुझे LDCUDC
बनने की अपेक्षा कुछ बेहतरीन काम करने चाहिए।
मनुष्य का जीवन कुछ बेहतरीन कामों के लिए मिला है, इसलिए मुझे उन्हीं कामों में अपनी जिंदगी को लगा देना चाहिए। जापान के गांधी कागावा केजी में यह बात आई। जिस तरह से महात्मा गांधी की तस्वीरें अपने यहाँ हर जगह रहती हैं,
सभी महात्मा गांधी की जय बोलते हैं, सारा का सारा जापान भी एक ही आदमी की जय बोलता है और उस आदमी का नाम है कागावा। एक छोटा सा विद्यार्थी जिसके माँ बाप मर चुके थे,
अकेला बच्चा रह गया था। क्या करना चाहिए?
हमारे आपके जैसा आदमी होता तो यह ख्याल करता, यह ख्वाब देखता कि ब्याह कर लेना चाहिए,
बच्चे पैदा करना चाहिए और नौकरी करनी चाहिए,
अच्छा घर लेना चाहिए और सिनेमा देखना चाहिए, बीबी के लिए जेवर बनाने चाहिए।
इन्हीं ख्वाहिशों में सारी की सारी जिंदगी खत्म हो जाती है।
मित्रों, अगर हमारे आपके जैसा घटिया आदमी जापान का गांधी कागावा होता तो। पर कागावा की तमन्नाएं वो थी जो आध्यात्मिक मनुष्यों की होनी चाहिए।
उन्होंने कहा, मुझे जापान की सेवा करने के लिए भगवान ने भेजा है, मैं सेवा करूंगा।
वह गांव गांव गया, मोहल्ले मोहल्ले गया,
जहां कहीं भी गंदगी देखी, जहां कहीं कोढ़ी और गंदे लोग देखे, जहां कहीं शराबी गरीब गंदे लोग रहते थे, रोज खून खच्चर होते थे,
गाली गलौज होते थे,
जहां सारे के सारे लोग नरक में डूबे पड़े थे, जापान के गांधी कागावा वहां गए और उस मोहल्ले में अपनी झोंपड़ी बना ली।
उन्हीं दरिद्र लोगों के बीच रहने लगे। क्रमशः परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी 2, आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांत द्वितीय किश्त।
विगत अंक में आपने पढ़ा कि परम पूज्य गुरुदेव समस्त साधकों को आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांतों से परिचित कराते हुए कहते हैं कि व्यक्ति की नासमझी को समझदारी में बदलने का नाम ही आध्यात्मिकता है। यदि व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाता है और वह एक विवेकशील मनुष्य की तरह जीवन को सही सिद्धांतों पर जीने का प्रयत्न करता है तो यह कहा जा सकता है कि आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांतों को उसने हृदयंगम कर लिया है।
इसके उपरांत पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्प अर्पित करने से लेकर उनको जल चढ़ाने तक की समस्त प्रक्रियाओं के पीछे निहित भाव को स्पष्ट करते हैं।
वे कहते हैं कि इन आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के पीछे का भाव ही उनका मूल सिद्धांत है। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को।
सेवा का आनंद। मित्रों, कागावा किसी को चाचा जी, किसी को ताऊजी, किसी को भैया जी, किसी को दादाजी कहते और सबको अपना बनाते चले गए।
हर समय उन्हीं बीमारों की सेवा करते जो किसी मुसीबत में फंसे होते, उनकी सहायता करते।
शाम को दूसरी जगह जाकर 2 घंटे ट्यूशन करते और 50 रुपये महीने कमा करके ले आते। बस यही उनके गुजारे का धन था। इसी गुजारे के धन के द्वारा कागावा सारे के सारे गाँव की सेवा करने लगे,
गंदे जनों की सेवा करने लगे।
एक दिन एक छोकरी उनके पास आई और पूछा, कागावा आप कहाँ जाते हैं? उस लड़की को वे ट्यूशन पढ़ाते थे। उन्होंने कहा, मैं तो गंदे मोहल्ले में रहता हूँ।
जो दुखी और दरिद्र हैं, उन्हीं में तो भगवान है। भगवान हाथ पसारता है और यह कहता है कि दरिद्र और पिछड़े लोगों के रूप में मैं ही हूँ। आओ, कोई है जो मेरी सेवा करे, सहायता करे। मैंने तो भगवान को गंदे वाले मोहल्ले में देखा और उन्हीं की सेवा करने के लिए चला गया।
मित्रों,
उस छोकरी ने कहा कि क्या हमें भी सेवा करने का मौका मिलेगा?
कागावा ने कहा, हाँ, तुम भी चल सकती हो।
उसने देखा कि जापान के कागावा की झोपड़ी में कुछ भी नहीं था। सारे दिन उन गंदे लोगों की सेवा करते देखा।
उस छोकरी ने कहा, कागावा,
तुम्हें इस जगह पर क्या मजा आता है? उन्होंने कहा, इस मजे को और इस आनंद को चखना हर आदमी का काम नहीं है।
क्यों?
क्योंकि हर आदमी इंद्रियों का गुलाम है, क्योंकि हर आदमी वासना और तृष्णा का गुलाम है।
इसलिए उसको दौलत चाहिए, साधन चाहिए।
यह आनंद तो त्याग का आनंद है, सेवा का आनंद है। यह महानता का आनंद है जो किसी किसी भाग्यवान को मिलता है, और वह भाग्यवान मैं हूँ जो सेवा करने में जीवन लगा रहा हूँ। छोकरी ने कहा, मैं भी आपके पास 2-5 दिन रहूँ।
कागावा ने कहा, हाँ, तुम भी मेरे साथ 2-5 दिन रह सकती हो।
वह 2-5 दिन रही तो उसने कहा कि यह आनंद का जीवन है, यह स्वर्ग का जीवन है, मैं भी अपने जीवन को इसमें लगाना चाहूंगी। कागावा ने कहा, मेरे पास तो घर भी नहीं है, धन भी नहीं है, मेरे पास दौलत कहाँ है, मेरे पास साधन कहाँ है, मेरे पास पलंग कहाँ है, फिर मैं तुम्हें कैसे कहूँ कि तुम मेरे साथ साथ रहो,
मेरी जीवन संगिनी बन करके रहो।
मुझे तुम्हारा प्रस्ताव नामंजूर है क्योंकि मैं तुम्हारी सुविधा के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अपना पेट पालने के लिए ही बड़ी मुश्किल है।
मित्रों,
छोकरी ने कहा, पेट तो कुत्ते भी पालते हैं, बंदर भी पालते हैं, पेट तो चींटियां भी पालती हैं, मक्खियां भी पालती हैं। पेट पालना क्या कोई बड़ी समस्या है? मैं तो आपकी तरह सेवा करूंगी और ऐसा महान व्यक्ति जिसको मैं देवता कहूँ, भगवान कहूँ, उसके चरणों को धोकर के पीऊंगी। दोनों साथ हो गए और मित्रों,
जापान का बड़ा वाला काम होने लगा समाज सेवा का।
उनकी इतनी बड़ी लंबी कहानी है कि अब मैं आपसे क्या कहूँ, कहाँ तक कह सकता हूँ। बस अंत में यह हुआ कि जापान के गांधी कागावा को हर आदमी ने यह कहा कि यह जिंदा भगवान है कागावा के रूप में, जो समाज सेवा में अपने आप का उत्सर्ग कर चुका है, उसका नाम भगवान है। भगवान का दर्शन करने के लिए लोग आए और उनके चरणों में दान दक्षिणा चढ़ाने के लिए आए।
कागावा जापान के गांधी बन गए। एक छोटा वाला, मामूली वाला विद्यार्थी जापान की जनता को कितना प्रभावित कर सका,
जापान की जनता पर अपनी गहरी छाप डाल सका जिसकी न माँ थी और न बाप था।
वह महात्मा गांधी जैसा महान बन गया। मित्रों,
जब मनुष्य के भीतर महानता आती है तो भगवान की दौलत, भगवान का प्यार, भगवान का सहयोग अनायास ही न जाने कहां से बरसता हुआ चला आता है। भगवान के एहसान हमारे ऊपर।
साथियों, हिंदुस्तान के एक आदमी का एक और किस्सा सुनाऊं। राजस्थान का 22-23 साल का एक छोकरा संस्कृत में मध्यमा तक पढ़ा हुआ एक स्कूल में अध्यापक था। 4 साल शादी को हुए थे।
18 साल में उसका विवाह हो गया था और 22 साल की उम्र में उसकी पत्नी का देहांत हो गया।
4 साल का बीबी का साथ। उसे पत्नी की याद आई तो कलेजा थामकर रह गया। आपकी और हमारी बीबी का देहांत हो जाता तो पहले सोचते कि मरने से पहले दोबारा विवाह हो जाए, पर उस आदमी की तबीयत अलग थी।
उसके मन में आया कि जिस महिला ने मेरे जीवन में 4 साल इतने आनंद और उल्लास से व्यतीत किए, उसका एहसान किस तरीके से चुकाना चाहिए। महान व्यक्तियों के सोचने का ढंग हमारे आपके जैसा होता तो गया जी में जाकर के पिंडदान तर्पण करते और कहते कि ले यह कच्चा आटा का पिंखा।
वह कहती, अरे बाबा, रोटी तो बना करके ले आ, कच्चा आटा खिलाता है पागल।
लेकिन उसने गया जी में कच्चा आटा खिलाने की अपेक्षा दूसरे तरीके अख्तियार किए और पत्नी के गांव चला गया। गांव के लोगों से कहा कि आपका और आपकी छोकरी का एहसान मेरे ऊपर है, मैं इस गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ।
मित्रों,
भगवान के भक्त के ऊपर सारे समाज का एहसान होता है, माँ बाप का एहसान होता है। जो ऐसा सोचता है वह बड़ा आदमी है। जो कहता है कि गुरुजी, तीन माला करते करते एक महीना हो गया और कुछ भी काम नहीं बना, नौकरी में तरक्की भी नहीं हुई।
महाराज जी,
ऐसा मालूम पड़ता है कि गायत्री माता नाराज हो गई। बताए क्या करना चाहिए।
गायत्री माता ध्यान ही नहीं देती।
अब आप ही कुछ और बता देते, अब मैं क्या कहूँ। केवल यही कह सकता हूँ कि लोहे की सलाखें गरम करके ला और आचार्य जी के चिपका दे। एक महीना जप कर लिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। शिकायत करता है कि फलाना काम नहीं हुआ, ढिकाना काम नहीं हुआ। एहसान जताता है भगवान के ऊपर और आचार्य जी के ऊपर। जिस दिन से तुम पैदा हुए हो तुम्हारे ऊपर भगवान के असंख्य एहसान हैं। उन सबको भूल गए और कहते हो कि हमने तीन माला जप किया पर परीक्षा में पास नहीं किया, मेरा यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया।
इस तरह मित्रों,
हमारी छोटी और खोटी सोच की हम हर किसी पर अपना एहसान जताते रहते हैं। हम बहुत घटिया आदमी हैं और हमें भगवान तक पहुंचने में बहुत देर लगेगी। जिनके मन में हमेशा यह आता है कि भगवान का एहसान हमारे ऊपर है, मेरे गुरु का है, समाज का है, माता पिता का है, मैं सभी के एहसानों से दबा पड़ा हूँ, तो समझिए कि वह आदमी है जिसको हम आध्यात्मिक कह सकते हैं और जिसमें आगे बढ़ने की कुबत और हिम्मत हो सकती है।
मित्रों, इसी तरह का था वह अध्यापक।
उसने उस गांव में जाकर कहा, आप सभी के हमारे ऊपर बहुत एहसान है, इस गांव के लिए और यहाँ के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं नौकरी से इस्तीफा दूंगा और आपके गांव में रहना चाहूंगा, इस गांव की बच्चियों को शिक्षित बनाऊंगा और सारी जिंदगी इसी में खर्च करूंगा। लोगों ने पागल और बेवकूफ कहा, 45 रुपये महीने की नौकरी छोड़ेगा और यहाँ बिना कीमत के पढ़ाएगा। उन्होंने कहा, नौकरी करने के लिए जिंदगी नहीं है। लोकमान्य तिलक ने जब 30 रुपये महीने की नौकरी मंजूर कर ली तो लोगों ने कहा, 30 रुपये में से तो तुम्हारे मरने के लिए कफन भी नहीं बचने वाला है।
उन्होंने कहा, कफन की चिंता औरों को करनी चाहिए जिनको लाश संभालनी हो।
मुझे लाश नहीं संभालनी है, इसलिए मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं।
मित्रों, गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने शिक्षा समिति बनाई, उन्होंने अध्यापकों को नौकरी पर रखा और स्वयं उसके संचालक बने और 30 रुपये महीने लेने लगे।
लोगों ने कहा कि आपके अध्यापकों और नौकरों को 200 रुपये महीना मिला और आप इस समिति के संचालक और संस्थापक हैं, उसे केवल 30 रुपया महीना बस। उन्होंने कहा कि आदमी को खर्च करने के लिए इतना ही काफी है। जो आदमी अपने चाल चलन और सेवा की छाप दूसरों पर नहीं डाल सकता वह दूसरों से काम लेने का हकदार नहीं हो सकता।
अध्यापकों को 200 रुपया मिलता है और मुझे मिले 250 रुपये, तब अध्यापक चुपके चुपके कहेंगे कि 250 रुपये मिलते हैं, इसीलिए लंबी चौड़ी बातें बनाता है।
कम रुपये मिलते तो दाल आटे का भाव पता चलता कि बच्चों का पालन कैसे किया जाता है।
बड़ा आया हुकूमत चलाने वाला, कर्तव्य पालक होते हैं महापुरुष। मित्रों,
महापुरुष कर्तव्यों का पालन करने के लिए पैदा होते हैं। वह छोटा वाला अध्यापक नौकरी से इस्तीफा देकर गांव में चला गया और बच्चियों को कन्याओं को पढ़ाने लगा। पहले लोगों ने उसे पागल कहा, फिर उसका विरोध किया कि पता नहीं कब किसको लेकर के भाग जाए,
मारकर भगाओ इसे।
कई लोगों ने कहा कि यह पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसके पास बच्चियों को नहीं भेजा जाएगा।
वह बेचारा ढूंढ ढूंढ कर थोड़ी बहुत लड़कियों को ले आता।
लोगों ने कहा कि बिना मतलब के कोई कुछ नहीं करता, यह बहुत चालाक है, ऐसा ना हो कि ये हमारी बच्चियों को भ्रमित करे। सेवा के लिए हर स्थिति पार करनी पड़ती है, पहले उसका मखौल उड़ाया जाता है, मजाक बनती है, फिर भगवान के भक्त का विरोध किया जाता है। जब यह मालूम पड़ता है कि इसमें कुछ ताकत है, कुछ काम करने लगा है, तो दुनिया उसके पास आने लगती है। दूसरी वाली स्कीम, तीसरी वाली स्कीम है, जब दुनिया झुक जाती है और उसके पांव पर फिर अपना हृदय निकाल कर रख देती है।
मित्रों,
वह गांव में रहकर बच्चियों को बुलाता रहा, पढ़ाता रहा। फिर कुछ दिनों बाद लोगों ने कहा कि यह इंसान नहीं है, यह भगवान है।
इंसान वह आदमी है जिनकी ख्वाहिशें उनको खाए जाती हैं।
इंसान वह है जो वासनाओं और तृष्णाओं की जिंदगी में बंधे हुए जानवर के तरीके से है, और भगवान वह आदमी है जिसको तृष्णाओं ने वासनाओं ने खोल दिया और जो कर्तव्यों के पीछे चल पड़ा।
उस आदमी का नाम भगवान है।
लोगों ने कहा कि यह अध्यापक नहीं भगवान है, और भगवान के लिए लोग अपने हृदय से उपयोग की सारी चीजें उठाकर लाए,
साधन जुटाए, चारपाई, कपड़े बनवाए, मित्रों।
उस भगवान का काम बढ़ता हुआ चला गया।
राजस्थान के वनस्थली बालिका विद्यालय के संस्थापक हीरालाल शास्त्री थे। जब राजस्थान में पहली बार मुख्यमंत्री का चयन होना था, तब लोगों ने कहा राजस्थान का मुख्यमंत्री भगवान को बनाना चाहिए। कौन सा भगवान?
जो संस्कृत में मध्यमा तक पढ़ा हुआ था,
जो 45 रुपये महीना पाता था, अध्यापक हीरालाल शास्त्री। मित्रों,
मैं आपको महापुरुषों की कहानियां सुना रहा हूं, दृष्टांत दे रहा हूं। नहीं, मैं यह बता रहा हूं कि जिन व्यक्तियों ने जीवन में महानतम काम किए, तो उसी तरह से भगवान के प्यार, भगवान के अनुग्रह और भगवान के सहयोग के अधिकारी होते चले गए,
उनके सभी कार्य पूर्ण होते चले गए।
मैं भी अपने गुरु की आज्ञा से उसी रास्ते पर चलता हुआ चला गया जिसे कि मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को अपने जीवन में घोल घोल करके पिया है। आप लोगों ने जुबान से कहा है और कान से सुना है। जुबान से कहने और कान से सुनने की चीज अध्यात्म नहीं है। क्या हो गया, कैसे बैठे हो साहब?
डॉक्टर ने दवाई बता दी।
क्या नाम बताया?
स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे।
आपने कान से सुन लिया?
कौन सी दवा? स्ट्रेप्टोमाइसिन।
जुबान से कह रहे हैं कि कंपाउंडर साहब,
हमें दवा दीजिए।
दवा दे दी और आपने रख ली। अब आपने क्या किया?
लकड़ी की एक माला उठाई और दवा स्ट्रेप्टोमाइसिन चौकी पर रख दी और उसके चारों ओर धूप घुमाई और जप करना शुरू कर दिया। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, 1,25,000 का अनुष्ठान करना है स्ट्रेप्टोमाइसिन का। अरे बाबा,
उसे खाता है या जप करता है? नहीं महाराज जी,
हम तो अनुष्ठान करेंगे।
और खाएगा नहीं? नहीं खाएंगे तो नहीं। खाएगा नहीं तो तेरी टी बी अच्छी होने वाली नहीं है। अच्छे होने के लिए डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी।
भगवान को जीवन में समावेश करिए। मित्रों,
भगवान की विचारणाएं ऐसी नहीं है कि जिनको कानों से सुनने के बाद अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं, और भगवान उस आदमी का नाम नहीं है जिसका नाम जुबान से कहने के बाद आपका उद्देश्य पूरा हो सकता है, बल्कि उसको जीवन में समाविष्ट करना पड़ेगा, समावेश करना पड़ेगा।
जब आप दवा खाना शुरू करेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन लेंगे और दूसरी गोलियां खाएंगे, विटामिन डी खाएंगे, अमुक चीजें खाएंगे, तब आपके शरीर में कुछ ताकत आएगी, बीमारियां भागेगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यह तब होगा जब आप दवा खाएंगे।
आध्यात्मिकता खाने की चीज है, मान लेने की नहीं। आध्यात्मिकता सुनने की चीज नहीं है, काम में लाने की है।
मित्रों, मैं उसी आध्यात्मिकता का वर्णन कर रहा हूँ जो मेरे गुरु ने मुझको सिखाई।
मैं सारी जिंदगी भर उसे काम में लाता रहा, और काम में लाने का परिणाम यह है कि मैं एक छोटा सा इंसान, नगण्य सा इंसान लोगों की निगाह में क्या हो गया,
मैं बताना नहीं चाहता। मरने के बाद, मेरे चले जाने के बाद विचार कीजिए कि वह आदमी जिसका कि हम व्याख्यान सुनने के लिए गए थे,
जिस आदमी के पास रहे, क्या वह छोटा आदमी था या बड़ा आदमी था, उसने क्या पाया था?
हाँ मित्रों,
हमने बहुत पाया और अपने प्रभाव की दृष्टि से न जाने क्या क्या पाया। मैं वह आदमी हूँ कि किसी की सेवा करने के लिए खड़ा हो जाऊँ और अपने मन से आशीर्वाद देने लगूँ तो न जाने क्या से क्या हो जाए।
घटना सुनाऊँ?
नहीं, मैं नहीं सुनाता हूँ, पर एकाध घटना आपकी जानकारी के लिए बता ही देता हूँ।
2 वर्ष पहले मुझे भोपाल जाने का मौका मिला। भोपाल चला गया और मेरा व्याख्यान हो रहा था। एक लंबा सा आदमी जीप में बैठा और मेरा भाषण सुन रहा था।
जब मैं चलने लगा तो उसने कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, कहो क्या बात करना चाहते हो? उसने कहा कि आपको तो मालूम नहीं, आप मुझे नहीं जानते।
मैं आपको जानता हूँ।
मैंने कहा, बताइए न फिर, आप जानते हैं तो, मेरी पत्नी आपकी शिष्या है। मैंने कहा, होंगी, बहुत से लोग हैं, आते हैं, हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं, कोई पैसा थोड़े ही देना पड़ता है। होंगी, लाखों शिष्य हैं, कोई कहाँ, कोई कहाँ। बोला कि मेरी धर्मपत्नी आपकी शिष्या है। मैंने कहा, होगी, उसने ही मुझे भेजा है, आपसे काम की बात कहनी है। मैंने कहा, यहाँ एडवोकेट का घर है, मैं वहाँ ठहरा हुआ हूँ, आप शाम को आ जाना।
आध्यात्मिकता के चमत्कार। मित्रों,
8:30 बजे वह अपनी जीप दौड़ाता हुआ वहीं आ गया।
उन्होंने कहा, मेरा नाम श्यामाचरण शुक्ल है।
अरे, आपका नाम तो बहुत सुन रखा है मैंने, पर देखा नहीं आपने। मैंने कहा, मैंने कब देखा? उन्होंने कहा कि बात बात में मैं इंदिरा गांधी से और काबरा से यह वायदा करके आया था कि मैं रानी सिंधिया की मिनिस्ट्री को उखाड़ दूंगा और गोविंद राम जी को लगा दूंगा।
इसी के लिए जनता परिषद के मुकाबले मुझे कांग्रेस पार्टी का नेता बनाया गया था। गुरुजी, मैंने तो सारी की सारी ताकत लगा दी।
अब मुझे मालूम पड़ता है कि सिंधिया को उखाड़ना, गोविंद राम जी को लगाना सरल नहीं है।
अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा?
अब इंदिरा गांधी जी से क्या कहूंगा? या तो सिंधिया को उखाड़ो या फिर हटो, किसी और को बनाते हैं।
गुरुजी,
अब क्या करना चाहिए? अगर आपकी कृपा हो जाए किसी तरीके से तो काम बन सकता है। मेरी पत्नी ने कहा है कि आचार्य जी को लोग जानते नहीं हैं, जो जानते हैं उनको ही इनकी कीमत मालूम है।
हमारे पिताजी के 2500 काम आचार्य जी ने करवाए।
कहाँ रहते हैं? इंदौर के थे और उनके 200 काम पूरे हुए थे।
मित्रों,
उनकी लड़की को विश्वास था कि आचार्य जी के पास जाया जाए तो काम बन सकता है।
वह आए, उन्होंने कहा, गुरुजी,
कैसे भी करके किसी भी तरह से आप मुझे राजस्थान का मंत्री बना दीजिए।
मैंने कहा, बाबा,
मैं क्या मंत्री बनाता हूँ या भगवान की बात कहता हूँ, मेरा काम मंत्री बनाना है या गायत्री का प्रचार प्रसार करना है। उन्होंने कहा, नहीं, आप कह दीजिए कि मैं मंत्री बन जाऊंगा,
फिर तो मैं देख लूंगा।
मैंने कहा, मैं कैसे कह दूं? मैं कोई मंत्री नहीं हूँ, गवर्नर नहीं हूँ, क्या कह सकता हूँ?
रात को 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक वह आदमी 4 घंटे बैठा ही रहा।
खाना खाया और ये बात वो बात करता रहा।
फिर मैंने गंभीरता से कहा, अच्छी बात, अब की बार तुम मंत्री हो जाओगे। कब तक मंत्री हो जाऊंगा?
अब 3 महीने रह गए हैं और वे सचमुच मंत्री बन गए। यह बात कानों से कान फैलती चली गई। जब मैं ग्वालियर गया तब रानी सिंधिया इस तरीके से मेरे आगे पीछे पड़ती थी जैसे बिल्ली दूध के आगे पीछे पड़ती है। ग्वालियर में 5 कुंडीय यज्ञ था। रानी सिंधिया ने कहा, आचार्य जी हमारे नगर में आ रहे हैं,
उनका स्वागत, उनकी व्यवस्था न की जाए, यह भला कैसे हो सकता है?
हमारी बात बिगड़ जाएगी। ग्वालियर के नागरिक हम भी हैं और नागरिक होने के नाते हमको भी हक है कि हम आचार्य जी का स्वागत करें। शहर में 5 कुंडीय यज्ञ में 250 आदमी इकट्ठे नहीं होते, लेकिन वहां इतने लोग कैसे आ गए?
मित्रों, सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उनको पता चला कि आचार्य जी हमारे यहाँ आए हुए हैं।
कानों कान बात न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गई।
उन्होंने कहा कि मैं आचार्य जी का व्याख्यान सुनना चाहता हूँ।
मेरे पास खबर आई कि सुखाड़िया जी 15 मिनट आपका भाषण सुनना चाहते हैं और दर्शन करना चाहते हैं। किसी ने उनको बताया है कि आपने आचार्य जी का दर्शन नहीं किया, तो आपने कुछ भी नहीं किया।
सुखाड़िया जी आए और बोले, 15 मिनट में आपका भाषण सुनूंगा। मैंने कहा, बैठ जाइए। 15 मिनट उन्होंने भाषण सुना, फिर हाथ जोड़कर बोले, मेरे लायक कोई काम नहीं बताएंगे क्या? मैंने कहा, कुछ होगा तो बता दूंगा।
अभी क्या बता सकता हूँ, आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, यही क्या कम है? जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं वे ही काफी हैं।
मित्रों, एक बार यूपी के गवर्नर विश्वनाथन आए।
उन्होंने कहा, मुझे आचार्य जी से मिलना है, उनके बारे में मुझे बहुत जानकारियां हैं, उनकी सूचना आई कि आपसे बात करना चाहते हैं।
वे मथुरा आए, उन्होंने कहा, मैं भगवान के दर्शन करने मथुरा आया था, लेकिन मैं भगवान के दर्शन नहीं कर सका, पर मैंने एक जीते जागते भगवान को देखा और वह व्यक्ति है आचार्य जी।
भारतवर्ष की इतनी सेवा किसी ने नहीं की जितनी आपने की। लोगों ने उनसे कहा कि आपने ये क्या कह दिया कि सब लोगों ने जितना काम किया उतना काम एक आदमी ने अकेले किया, आपने ऐसे क्यों कहा? उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने कहा वह मेरे हृदय की सच्ची अनुभूति है,
जैसे मैंने सुना देखा वैसा ही पाया। मित्रों,
एक लंबी यात्रा के बाद हमने कुछ पाया है, आप यह कहें कि हमारी भी मदद कर दीजिए तो बेटे हम आपकी हमेशा मदद करेंगे। आपके घुटनों में दर्द होता है, मैं आपके दर्द को बंद कर दूंगा, पर क्या इससे शांति आ जाएगी? कोई शांति नहीं आएगी। आपका घुटने का दर्द बंद हो जाएगा तो कान में दर्द शुरू हो जाएगा,
फिर कहेंगे कि कान का दर्द बंद करो। अरे बाबा,
मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या?
पहले बच्चा नहीं होता था तो बच्चा हो गया।
फिर कहेंगे कि साहब
हमारी बेटी विधवा हो गई, उसका कुछ इंतजाम कर दीजिए। मैंने क्या दुनियादारी का ठेका ले रखा है?
एक बार आशीर्वाद दे दिया, अब बार बार में क्या कर सकता हूँ? सारी दुनिया में मुसीबतें हैं, सारी दुनिया में कष्ट हैं, संसार में सुख दुख तो चलते रहते हैं। आपने छोटी छोटी चीजों की तमन्नाएं मेरे सामने रखी और आपने मूल मंत्र को अपने मन में से निकाल दिया, जो कि एक ही लक्ष्य है, अध्यात्म, जिसे पाने के बाद में आदमी निहाल हो जाता है और आदमी न जाने क्या से क्या हो जाता है। मैं उस बड़े रास्ते पर आपको चलाना चाहता था। मैं यह नहीं चाहता कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप बार बार मुझे कहें। आप न भी कहें तो भी मैं पूरा कर दूंगा, क्योंकि मेरा मन बहुत ही कोमल और बहुत ही मुलायम है।
क्रमशः परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी -3 आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांत गतांक से आगे।
विगत अंक में आपने पढ़ा कि परम पूज्य गुरुदेव अपने इस महत्वपूर्ण उद्बोधन में अध्यात्म पथ के सभी पथिकों से आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांतों को याद करने को कहते हैं।
परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दृष्टिकोण का परिवर्तन, विवेकशीलता का जागरण एवं सेवाभाव का विकास, ये सभी आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांतों में हैं।
यदि व्यक्ति बहुत उपासना करे पर कर्तव्य पालन करने से एवं सेवाभाव का विकास करने से वंचित रह जाए तो उसके अंदर अध्यात्म के मूल गुणों का विकास नहीं हो पाता है। परम पूज्य गुरुदेव जापान के गांधी कागावा से लेकर स्वयं अपना उदाहरण प्रदान करते हुए कहते हैं कि जिन्होंने भी आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांतों को आत्मसात किया, उन सबके जीवन में वे सभी चमत्कार स्वत आते चले गए जिनके विषय में हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को।
गुरुदेव माताजी का त्याग। मित्रों,
मुझे अपने दरवाजे पर आने वाले व्यक्ति और उनके एहसान याद रहते हैं।
मुझे अपना फर्ज याद रहता है।
एक बार एक बहेलिया आया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे पर एक बहेलिया आया है,
इसके कुछ खाने पीने का इंतजाम तो करना ही चाहिए।
कबूतर ने कहा कि हम तो जानवर हैं, इसके लिए हम क्या इंतजाम कर सकते हैं। कबूतरी ने कहा कि अपने दरवाजे पर आया है, इसलिए इसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। कबूतर गया और बहुत से तिनके और घास इकट्ठी कर लाया। कबूतरी गई और कहीं से जलती हुई लकड़ी उठाकर ले आए और घास तिनकों में उस जलती हुई लकड़ी को रख दिया।
आग जलने लगी।
जलती आग में पहले कबूतर कूदा और उसके बाद कबूतरी,
दोनों आग में जल गए।
बहेलिया जो भूखा बैठा था, उसने देखा कि भगवान की बहुत दया है जो दो कबूतर खाने को मिल गए।
मित्रों,
कबूतर और कबूतरी की यह तो कहानी है, पर हम और हमारी धर्मपत्नी सारी जिंदगी कबूतर और कबूतरी के तरीके से यही काम करते रहे हैं। हमने अपने दरवाजे पर आने वाले की इज्जत का, उसकी भावनाओं का बहुत ख्याल रखा है।
अभी भी ख्याल है और आगे भी ख्याल रखेंगे।
जब तक हमें जिंदा रहना है, अपनी आदत, अपने स्वभाव और कर्तव्य से बाज आने वाले नहीं हैं।
हम जरूर सहायता करेंगे।
मान लीजिए आपकी जरूरत को पूरा कर दें, तो क्या आपका यहाँ आने का उद्देश्य पूरा हो सकता है?
कुछ भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
मनोकामनाओं की पूर्ति असंभव है।
कैसे? एक थे महात्मा और उनके यहाँ एक चूहा रहता था। चूहे ने कहा, महाराज जी,
हमको बिल्ली तंग करती है,
हमें बिल्ली बना दो। बिल्ली बना दिया। फिर कुत्ता आया और बिल्ली को तंग करने लगा। बिल्ली ने कहा, महाराज जी,
यह कुत्ता हमको तंग करता है, हमें कुत्ता बना दो।
कुत्ता बना दिया। कुत्तों को खाने वाले लकड़बग्घे आते हैं। लकड़बग्घे आकर कुत्तों को खाने लगे तो कुत्ते को लकड़बग्घा बना दिया। लकड़बग्घे को शेर खाते हैं।
उसने कहा, शेर बहुत तंग करता है,
हमें शेर बना दीजिए। महाराज जी ने जल लिया, मंत्र फूंका और लकड़बग्घे को शेर बना दिया। शेर जंगल में बैठा था और शिकारी बंदूक लेकर के आया। शेर को मारकर जीप में डालकर ले जाने लगा। उस शेर ने देखा कि शिकारी आता है और शेर को मारकर ले जाता है। शेर ने कहा, महाराज जी,
हमको तो बड़ा भय है, कष्ट है।
क्यों? शिकारी सब शेरों को मार रहा है, हमको भी मार डालेगा, हमारी खाल निकाल लेगा। अब तो बड़ी मुश्किल आ गई।
क्या करना चाहिए?
महाराज जी ने कहा, बेटा तू चूहा हो जा। मंत्र फूंका और शेर चूहा बन गया। अब तू चूहा बनकर बैठा रहे।
न शिकारी आने वाला है, न लकड़बग्घा आने वाला है, न कुत्ता आने वाला है, न बिल्ली आने वाली है। रोटी खा लिया कर, घूम लिया कर, सुखी रहेगा।
महाराज जी ने चूहे को फिर से चूहा बना दिया। समस्याओं का स्थायी समाधान। मित्रों,
जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही।
अभी समस्या एक है, कल 5 आएंगी। कल 5 समस्याएं आपकी हल होंगी, फिर ले आएंगी 25। 25 समस्याएं हल कर दूंगा तो लेकर के आएंगे 500 समस्याएं। समस्याएं तो आती ही रहती हैं। समस्याओं को अगर हल करना है तो आदमी को चाहिए कि अपने मन को, आत्मा को शुद्ध कर डाले और अपने विचारों को, दृष्टिकोण को सही कर ले, तभी सचमुच में समस्याएं हल हो पाएंगी। इसीलिए मित्रों,
मैंने शुरू में भी यही शिक्षण दिया और आज भी यही शिक्षण दे रहा हूं कि आप अपने दृष्टिकोण को ठीक करें। आपको मैंने इसलिए बुलाया था कि आपके अंतः चेतन के कपाट खोल दूं और हमेशा अध्यात्मवेता अपने शिष्यों को जो शिक्षण करते हैं वह शिक्षण करूं।
इसीलिए आपको बुलाया कि आपको आपके बारे में जानकारी कराऊं। आप गुमराह हो गए थे।
आपको इसीलिए बुलाया कि आपको आपके रास्ते के बारे में, आपके लक्ष्य के बारे में फिर से जानकारी दे दूं। मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आपके मन में यह वहम भर गया है कि हम भगवान के प्यार और भगवान के अनुग्रह और भगवान की शक्ति पाने के लिए छोटे छोटे कर्मकांड और छो उपासना जैसे क्रियाकृत्य करने के बाद में उस स्थान तक पहुंच सकते हैं जहां पहुंचने वाले को भगवान का प्रकाश दिखाई पड़ता है और भगवान का स्नेह मिलने का हक मिल जाता है।
मित्रों,
मैंने आपको मन में से ये चीजें निकालने के लिए बुलाया है और मैंने आपको इसलिए भी बुलाया कि भगवान ने आपको पुकारा है। आप में से हर आदमी बहुत अच्छा, बहुत सच्चा और श्रेष्ठ स्तर का आदमी है। आपके ऊपर मलिनताएं जम गईं, आपके ऊपर मैल जम गया, आपके ऊपर कषाय और कलमश जम गए, इसलिए आपको अपने स्वरूप का भान नहीं रहा।
अगर आपको अपने स्वरूप का भान रहा होता तो आप में से हर आदमी आचार्य श्रीराम शर्मा होता, आप में से हर आदमी महात्मा गांधी होता, महात्मा बुद्ध होता, कबीर होता, दादू होता, नानक होता, जवाहरलाल होता, दयानंद होता, शंकराचार्य होता और न जाने कौन कौन होता।
आपको खाना भी मिल जाता, कपड़ा भी मिल जाता, रोटियां भी जरूर मिल जाती, लेकिन इतना पाने के बाद, इतना करने के बाद आप में समाज की सेवा करने के लिए, देश को ऊंचा उठाने के लिए, संस्कृति के लिए जो रोल अदा किया होता तो मजा आ गया होता। काम करते हुए भी, रोटी कमाते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते थे। मैं क्या कर सकता हूँ?
आप सब भूल गए,
मैंने आपको झकझोरने के लिए बुलाया।
मित्रों,
अब मैं जाने के समय में हूँ, सो मैंने अपना सारा का सारा मन, सारी की सारी भावनाएं इकट्ठी की और आपके ऊपर इन 5 दिनों में छाया रहा। मैंने जो कुछ कहा उस व्याख्यान का असर आपके ऊपर होने वाला है क्या? यकीन नहीं आता। मैं आपके ऊपर छाया रहा हूँ, सारे दिन आपको घेर कर रखा है, चारों दिन में आपके मन और बुद्धि पर छाया रहा हूँ। मैंने आपको बहुत कुछ कहा है, आपको हाथ जोड़कर भी कहा है, बहुत अनुनय किया है, प्रार्थना की है। इन दिनों आप काम करते रहे हैं तब मैं आपके पीछे पीछे लगा रहा हूँ।
अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा, अपने कारण शरीर के द्वारा, अपनी अंतश्चेतना के द्वारा आपके साथ साथ लगा रहा हूँ।
मैंने आप में से हर आदमी से यह कहा है कि मित्रों, आप उन लोगों में से नहीं हैं जिनको अपने बच्चे पैदा करने और जानवरों के तरीके से केवल पेट के लिए जिंदा रहना होता है। आप केवल उन लोगों में से नहीं हैं, आपको कुछ ऊंचे स्तर के कामों के लिए जिंदा रहना चाहिए, यह मैंने बार बार कहा है। समाज की पुकार सुने।
मित्रों,
आप उस जमाने में पैदा हुए हैं जिसमें आपकी सेवा सहायता की बहुत सख्त जरूरत है। आदमी आज सब कुछ भूल गया है, मैं क्या कह सकता हूँ? इतिहास साक्षी है कि कभी भी ऐसा गंदा जमाना नहीं आया जब आदमी अपने आप को भूल गया हो, अपने लक्ष्य और उद्देश्यों से इतना पिछड़ गया हो।
आदमी के पास धन दौलत है, मुबारक। आदमी पढ़ लिख गया, मुबारक। अंग्रेजी बोलना आ गया, मुबारक।
जैसा घटियापन आज दिखाई पड़ता है उतना घटिया आदमी कभी नहीं हुआ।
ऐसा घटिया आदमी मुसीबतें पैदा करेगा, घटिया आदमी समाज में भ्रम पैदा करेगा। इसलिए गिरे हुए आदमी को भावनात्मक स्तर पर ऊंचा उठाने के लिए भगवान ने आपको पुकारा है,
देश ने आपको पुकारा है, धर्म ने आपको पुकारा है। इस पुकार को कान में उंगली डालकर के क्या आप पेट के लिए जिंदा रहेंगे? क्या आप रोटियों के लिए जिंदा रहेंगे? क्या आपके विचारों का, सारी की सारी आकांक्षाओं का केंद्र बच्चे पैदा करना ही बना रहेगा?
क्या आपके सामने स्वार्थ पूर्ति और धनार्जन, इन दो के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं आएगी, आनी चाहिए?
मेरा पूरा पूरा मन है कि आपके अंदर वह बोध पैदा होना चाहिए जो आपका कल्याण करे और सारे समाज का कल्याण करे।
आपकी ऐसी भावना बलवती हो इसलिए आपको बुलाया। मित्रों,
आपसे प्रार्थना करने के बाद मैं विदा करता हूँ।
दोबारा मेरा आपको कब मिलना हो मैं नहीं कह सकता। दबाव डालने वाली प्रार्थना अब शायद मैं कभी न कर सकूं।
आप ऐसा मत मानना कि इन्होंने जो आज्ञा अनुरोध किया है तो ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हम इनका कहना नहीं मानेंगे तो देखेंगे कि ये हमारा क्या कर लेंगे। मैं आपका बहुत कुछ कर लूंगा, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ।
आप छोड़कर देख लीजिए।
कैसे छोड़ेंगे मुझे? पर मैं तो नहीं छोड़ूंगा। आपको ज्ञान की ज्योति जलानी थी क्योंकि आज चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। मनुष्य के जीवन में अंधेरा छाया हुआ है,
अपने बारे में अंधेरा, सामाजिक मान्यताओं के बारे में अंधेरा, जीवन के उद्देश्य के बारे में अंधेरा, पारिवारिक व्यवस्थाओं के बारे में अंधेरा, चारों ओर अंधेरा है।
ऐसे में एक मशाल जलाने की जरूरत थी और दीपक जलाने की जरूरत थी। आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं।
दीपक जलाने के लिए आपको शपथ लेनी चाहिए।
मैं कब कहता हूँ कि आपको बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए? लेकिन बच्चे पैदा करने के अलावा भी आपके मन में देश राष्ट्र के प्रति टीस और दर्द रहे तो आप मेरी तरह समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इसकी आज बहुत आवश्यकता है। आध्यात्मिकता करेगी सभी समस्याओं का समाधान।
मित्रों, आध्यात्मिकता पाप को दूर करेगी, आध्यात्मिकता अच्छे इंसान बनाएगी, आध्यात्मिकता दुनिया में खुशहाली ले आएगी,
आध्यात्मिकता दुनिया में व्याप्त पाप और ताप के अंगारों पर शीतल वर्षा करेगी। पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता के अलावा किसी और साधन से समस्याएं नहीं सुलझेंगी, इसलिए आध्यात्मिकता का लाना बहुत जरूरी है।
आध्यात्मिकता का वर्चस्व आज किसी काम का नहीं रहा। आज का निकम्मा वाला अध्यात्म, बेकार वाला अध्यात्म, बेवकूफों वाला अध्यात्म केवल कहने का अध्यात्म है,
उससे किसी का फायदा नहीं है।
आप अपने फर्ज और कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करें,
स्वयं को ऊंचा उठाएं और अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य करें जिसके लिए हम दुनिया में आए हैं।
हमारा मिशन भगवान का मिशन है, मानवता का मिशन है, व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने का मिशन है।
अगले दिनों यह सारे विश्व में फैलने वाला है। आप गीद गिलहरी के तरीके से इसमें सहयोग करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं।
मित्रों,
विचारना भावना ऊंची हो तो छोक्रिया से थोड़े से परिश्रम से भी भगवान को पाया जा सकता है।
आपको परीक्षित की कहानी सुना रहा हूँ। राजा परीक्षित को ऋषि ने शाप दे दिया था कि आज से सातवें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी।
लोमश ऋषि की समाधि खुली और उन्हें पता चला कि बेटे श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया है, तो उन्होंने कहा कि यह तो बहुत बुरा हो गया। राजा परीक्षित धर्मात्मा था और उसको ऐसा शाप दिया गया, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब मेरे बच्चे की बात को तो टाला नहीं जा सकता, लेकिन कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि इस विपत्ति में भी कोई अच्छाई पैदा की जा सके। लोमश ऋषि ने अपने विद्यार्थी को भेजा और कहा कि यह समाचार राजा परीक्षित को बताना चाहिए और यह बताना चाहिए कि जिंदगी के जो दिन बाकी रह गए हैं उनका अच्छे से उपयोग किया जाए।
राजा परीक्षित के पास वह विद्यार्थी चला गया।
उसने कहा कि श्रृंगी ऋषि ने आपको आज एक शाप दे दिया। क्या शाप दिया? यह शाप दिया कि आज से सातवें दिन आपको सांप काट लेगा और आपकी मौत हो जाएगी।
राजा ने पूछा कि तब मुझे क्या करना चाहिए?
ऋषि की क्या आज्ञा है? उन्होंने कहा कि जीवन का थोड़ा सा समय बचा हुआ है,
मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि उस बचे हुए समय का ठीक से इस्तेमाल कर ले।
जो समय व्यतीत हो गया सो हो गया, लेकिन जो रह गया है उसको अगर आदमी ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकता हो तो थोड़े दिन भी बहुत हैं हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लोमश ऋषि के संदेश के रूप में विद्यार्थी ने यह बात कही। मनुष्य की समस्या है अज्ञान।
मित्रों,
राजा परीक्षित विचार करने लगे कि मनुष्य के जीवन का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। विचार करने पर एक ही बात समझ में आई कि मनुष्य का मन, मनुष्य की अंतरात्मा इतनी महान और इतनी विशाल है कि अगर सीप के तरीके से उसमें स्वाति नक्षत्र की बूंद का पानी का एक कण भी मिल जाए तो यह जीवन धन्य बन सकता है।
आदमी के सामने एक ही समस्या है, वह है अज्ञान।
आदमी इतना समझदार और इतना अज्ञानी। समझदार इतना कि सारे के सारे काम करता है, पैसा कमाता है, व्यापार करता है, धंधा करता है और बड़ा आदमी बन जाता है, और बेवकूफ अज्ञानी इतना कि इसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसका स्वरूप क्या है, उसको किस लिए पैदा किया गया है और क्या करना चाहिए। अगर यह ज्ञान मनुष्य के भीतर से जागृत हो जाए तो आदमी के काम करने के ढंग और विचार करने के ढंग बहुत ही श्रेष्ठ बन सकते हैं और मनुष्य थोड़े दिनों में ही अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अज्ञान का निवारण करना एक ही समस्या मनुष्य के जीवन में है। अज्ञान जो मेरे मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार के ऊपर छाया हुआ है। कषाय और कलमश, पाप और ताप के आवरण छाए हुए हैं। इन आवरणों को अगर मैं हटा दूं, तो आत्मा का सूर्य इस तरीके से प्रकाशवान बन सकता है जैसे बादल की घटाएं हट जाने पर अंधेरा दूर हो जाता है और सूर्य की पुण्य प्रकाशमय आभा चारों ओर फैलने लगती है। इस तरीके से मुझे सिर्फ एक काम करना है कि अपने अज्ञान की मलिनता के आवरण को दूर कर देना है।
मित्रों,
भगवान और इंसान के बीच में एक छो दीवार है। इस एक इंच चौड़ी दीवार को हटाया जा सकता हो तो भगवान और इंसान दोनों एक हो जाएं, बिल्कुल समीप हो जाएं और दोनों एक दूसरे के प्यार का आदान प्रदान निरंतर करते रह सकते हैं। पर एक ही अज्ञान की दीवार है जिसने मनुष्य को यह विचार करने पर मजबूर कर दिया कि आदमी एक शरीर है, आदमी एक कीड़ा है, मकोड़ा है, आदमी एक जानवर है और जानवरों को जैसे जीना चाहिए उस तरीके से हम जिंदगी जिएं। यही विचार हमारे मन से लेकर के रोम रोम में आच्छादित है। हमारी सारी की सारी गतिविधियां कीड़े मकोड़ों के तरीके से, जानवरों के तरीके से, कुत्ते बिल्ली और बंदरों के तरीके से हैं।
बस उनके सामने दो ही उद्देश्य हैं, एक पेट पालना और दूसरा बच्चे पैदा करना।
वासना और तृष्णा इन दो के गुलाम सारे के सारे प्राणी हैं और सारे के सारे जानवर हैं। इंसान में फर्क यह है कि अगर उस दीवार को, जो मनुष्य और भगवान के बीच खड़ी कर दी गई है, उसे गिराया जा सके, तब आनंद और उल्लास की धारा जीवन में प्रवाहित हो सकती है।
मित्रों,
राजा परीक्षित ने विचार किया कि मुझे और कुछ काम नहीं करना है। क्रियाओं के फल नगण्य हैं। सारे के सारे फल जो मनुष्य के जीवन में स्थापित होते हैं, वे उसकी विचारणा पर टिके हुए हैं। विचारणा यदि ऊंची हो, तो छोटी मोटी क्रियाओं से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और जीवन के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। जब मनुष्य की क्रियाएं पहाड़ के बराबर हों और मनुष्य की भावनाएं नगण्य हों, तब वे क्रियाएं काम में नहीं आ सकती। भावनाएं पहाड़ के बराबर और क्रियाओं की कीमत राय के बराबर है। इसलिए उन्होंने कहा कि क्रियाएं जीवन में करुण, अमुक काम करुण, तमुक काम करुण, पर इससे कुछ बनने वाला नहीं है।
अपनी भावनाओं का मुझे परिष्कार करना चाहिए।
राजा परीक्षित के जी में यह बात आई।
उन्होंने तुरंत ही इंतजाम किया।
कोई ऐसा व्यक्ति बुलाया जाना चाहिए जो मेरे अंतरंग के कपाटों को खोल दे। उन्हें तलाश किया जो उनकी निगाह में आया और वे व्यक्ति थे शुकदेव जी।
शुकदेव जी वे व्यक्ति थे जिन्होंने अध्यात्म के ज्ञान को, भगवान के ज्ञान को जीवन में कार्यान्वित किया था।
जिस व्यक्ति ने भगवान के ज्ञान को कार्यान्वित किया हो, केवल वही आदमी है जो दूसरे के बुझे हुए दीपकों को जला सकता है।
अध्यात्म का अधिकारी कौन? मित्रों,
जिस आदमी ने अध्यात्म के ज्ञान को स्वयं जीवन में कार्यान्वित नहीं किया और जिसके जीवन के अंतरंग में वे विचारणाएं सुनाई नहीं दी और जो केवल बाहर बाहर से अध्यात्म के और पूजा के, धर्म के आयामों को छूता फिरता है, वह आदमी किसी दूसरे को लाभ नहीं दे सकता।
एक आदमी था,
नाव में बैठ करके समुद्र का बहुत लंबा चौड़ा सफर करके आया।
एक गोताखोर भी वहीं समुद्र के किनारे रहता था। गोताखोर समुद्र में जाता, डुबकी लगाता और कई मोती ले आता।
कभी 5 मोती, कभी 25 मोती, कभी 10 मोती ले आता और वह आदमी जो नाव में जहाज में बैठ करके सफर कर रहा था, उसने लंबे चौड़े समुद्र को पार कर लिया।
उसने डुबकी लगाने वाले गोताखोर से पूछा, भाई साहब,
हमने सारा समुद्र घूम लिया और एक भी मोती हमारे हाथ नहीं लगा और तुम यहीं के रहते हो और रोज मोती बीन लाते हो, इसकी वजह क्या है? उसने कहा, भाई साहब, इसका एक ही उत्तर है कि आप समुद्र की ऊपरी सतह पर घूमते रहते हैं और समुद्र के भीतर प्रवेश नहीं करते। अगर आपने समुद्र के भीतर गर्भ में प्रवेश करने की हिम्मत की होती, साहस दिखाया होता, तो आपको भी मेरी तरह से मोती मिल जाते।
जैसे कि मैं रोज ले आता हूँ, मैं समुद्र के अंदर घुस जाता हूँ,
मैं डुबकी लगाता हूँ और मैं जोखिम उठाता हूँ और मैं अपनी जान को हथेली पर रख करके जाता हूँ। इतना काम करने के बाद ही कोई आदमी मोती प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है।
मित्रों,
अध्यात्मवादी को भी गहरे में प्रवेश करना पड़ता है। कहने सुनने और करने तक ही ये बातें सीमित नहीं हैं।
आपने रामायण सुन ली, ठीक किया, अच्छा काम किया।
आपने रामायण को कहना सीख लिया, उससे भी अच्छा काम कर लिया। आपने गोवर्धन की परिक्रमा कर ली, यह उससे भी अच्छा काम कर लिया। ये तो बहुत ही अच्छे काम हैं और आपको करने चाहिए, लेकिन यह सब काम करने पर ही आप अध्यात्मवादी नहीं हो सकते और आध्यात्मिकता का लाभ नहीं उठा सकते।
आध्यात्मिकता का लाभ उठाने के लिए जरूरी है उन विचारों को, उन सिद्धांतों को आत्मसात करना जो हमको बताए जाते हैं,
सिखाए जाते हैं, उन्हें हम अपने जीवन में कार्यान्वित करना शुरू करें।
ऐसे ही आदमी अध्यात्म के अधिकारी कहे जाते हैं। क्रमशः अगले अंक में समापन। परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी -4 आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांत समापन किस्त।
विगत अंक में आपने पढ़ा कि परम पूज्य गुरुदेव अपने इस प्रस्तुत उद्बोधन में समस्त श्रोताओं को आध्यात्मिकता के मूल एवं वास्तविक सिद्धांत से परिचित कराते हैं। वे कहते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ इस आधार पर निकल करके आता है कि हम अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित कर पाने में सक्षम हो पाए अथवा नहीं। वे कहते हैं कि आध्यात्मिकता सही अर्थों में तभी आ पाती है जब व्यक्ति सामाजिक उत्थान, लोक कल्याण और दूसरों के विकास में अपने जीवन को लगा देने में संकोच नहीं करता है। वे जापान के गांधी कागावा से लेकर स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह बताते हैं कि आध्यात्मिकता का मूल आधार समाज की सेवा और दूसरों का कल्याण है। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को।
अंतरंग के कपाट खोलने वाले गुरु। मित्रों,
राजा परीक्षित के जी में आया कि मुझे किसी ऐसे आदमी से कथा सुननी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिसका दीपक स्वयं जला हुआ हो। जिसका दीपक जला होगा, वही दूसरों को रोशनी दे सकता है। पता किया तो ध्यान में आया कि शुकदेव जी ही ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको बुलाया जाए और उनके द्वारा भागवत की कथा सुनी जाए।
बस एक दिन समाप्त हो गया परीक्षित को शाप लगे हुए।
एक दिन इस तैयारी में लगा रहा कि मुझको अब क्या करना चाहिए। शुकदेव जी के पास खबर भेजी,
स्वयं कथा सुनने का निश्चय किया। सामान मंगाकर तैयारी की।
7 दिन में से 2 दिन बीत गए और 1 दिन यह तैयारी करनी थी कि मुझे मरना है। सोकाठी, कफन, लकड़ी, घी आदि की व्यवस्था का 1 दिन रखा।
शेष दिनों में उन्होंने भागवत कथा का सारांश सुना। मित्रों, मेरे जीवन में भी महत्वपूर्ण 4 दिन कई बार बदल बदल कर सामने आए।
पहली बार जब मेरे गुरु मेरे पास आए और मेरे अंतरंग के कपाट खोल दिए।
4 दिन की मेरे जीवन की अभूतपूर्व घटना, जिसको मैं सदैव याद रखूंगा, कभी भुला नहीं सकूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया।